आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने लाल किला कार धमाका केस में दिल्ली से खुदकुश बमबार उमर नबी के अहम साथी को गिरफ्तार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टीम से कहा है कि वो यादगारी किताब में अपने तजुर्बात रकम करें ताकि मुस्तकबिल के कामकाज में रहनुमाई हासिल हो और मुल्क की तामीर में मदद मिले। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क की खिदमत की इस मुहिम से मजीद ताकतवर तहरीक मिलती है। NDA के 5 इत्तेहादी पार्टियों बिहार में नई सरकार की तश्कील के बारे में बातचीत करने में मसरूफ हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर की आला क्यादत से मुलाकात की है। उन्होंने दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने टोक्यो में डेफलिम्स में आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने मर्दों के एयर राइफल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारत ने मर्दों और खवातीन दोनों के मुकाबलों में दो दो तमगे हासिल किए हैं। और श्रीलंका के शहर कोलंबो में नाबीना खवातीन के अभी तक के पहले T20 आलमी कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने लाल किला कार धमाके के मामले में दिल्ली से आमिर राशिद अली नामी एक कश्मीरी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक आमिर राशिद ने मुबैना तौर पर खुदकुश बमबार उमर नबी के साथ दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश की थी, जिसमें 10 लोग हलाक और तकरीबन 25 अफराद जख्मी हो गए थे। NIA ने कहा कि इस हमले में मुलव्वस कार उसके नाम से रजिस्टर्ड थी। इंसदाद दहशतगर्दी की एजेंसी ने एक और गाड़ी भी जब्त की है जिसका ताल्लुक उमर नबी से है। इस केस में सबूत के लिए इस गाड़ी का मुआयना किया जा रहा है। NIA ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें धमाके में जख्मी होने वाले भी शामिल हैं। NIA दिल्ली पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्तलिफ ज़ैली एजेंसियों के साथ करीबी तआवुन से काम कर रही है। एजेंसी ने कहा कि वो इस धमाके के पीछे वसी तर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बहुत से निकात पर काम नीज इस मामले में मुलव्वस दीगर अफराद की शिनाख्त कर रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अलफलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग FIRs दर्ज की हैं। एक FIR धोखादही के इल्ज़ाम में, जबकि दूसरी FIR जालसाजी से मुतालिक दफात के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कल कौमी राजधानी के ओखला इलाके में वाक़ यूनिवर्सिटी के दफ्तर का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भी जारी किया है और इससे कुछ दस्तावेजात तलब की हैं। ये दस्तावेजात वाइट कॉलर दहशतगर्दाना मॉड्यूल में पुलिस की तहकीकात के हिस्से के तौर पर तलब की गई हैं। इस मॉड्यूल का पिछले हफ्ते पर्दाफाश किया गया था। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC के जायजों के दौरान यूनिवर्सिटी में संगीन बेजाबतकियों की निशानदेही किए जाने के बाद ये FIR दर्ज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टीम से कहा है कि वो मुस्तकबिल के काम की रहनुमाई फराहम करने की गरज से अपने तजुर्बात को ब्लू बुक में जब्त तहरीर करें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के रिकॉर्ड्स बरकरार रखना तलबा के लिए मुफीद होगा और इससे मुल्क की तामीर में तआवुन हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इजहार कल गुजरात के शहर सूरत में ज़ेर तामीर स्टेशन के अपने दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट में शामिल इंजीनियरों और दीगर कारकुनों की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा। दौरे के दौरान जनाब मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने रफ्तार और निज़ाम उल-औक़ात के अहदाफ की तामील के बारे में मालूमात हासिल की। कारकुनान ने उन्हें बताया कि इस प्रोजेक्ट में चाबुक दस्ती और बगैर किसी मुश्किल के पेशरफ्त हो रही है।
आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
आप क्या कहेगी?
मैं केरला से हूँ, मैं नवसारी में इधर Section 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रीबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है।
क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती हैं?
सर सेवा लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा आगे, परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए।
देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ, जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं।
नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ, डिजाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में, और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते हैं, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं। सर,
ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें, यहाँ से जो सीखा हुआ है वो वहाँ रिप्लिका होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है।
जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे।
इस दौरे में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बिहार में कानून साज असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद नई सरकार की तशकील से मुतालिक एनडीए में शामिल 5 शरीक पार्टियों के माबेन जोर शोर से तबादले ख्याल जारी है। गुज़श्ता रोज से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माबेन नई सरकार की तश्कील, काबीना में नुमाइंदगी के कोटे और दीगर कलीदी मामलात से मुतालिक लगातार तबादले ख्याल किया जा रहा है। इससे कबल दिन में उम्र दाखला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय और नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार से पटना में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बीजेपी के रियासती सदर डॉ दिलीप जायसवाल ने भी शाम देर गए वजीर आला से मुलाकात की। इसी दौरान जनाब कुशवाहा सरकार की तश्कील से ताल्लुक रखने वाले मसाइल पर बीजेपी की आला क्यादत के साथ तबादले ख्याल करने की गरज से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट।
बीजेपी और जेडीयू के नौ मुंतखब अरकान कानून साज असेंबली की अलहदा मीटिंगें कल पटना में होने की तवक्को है, जिसमें अपने अपने कानून साज पार्टी लीडरों का इंतखाब करेंगे। तवक्को है कि वजीर आला नीतीश कुमार जेडीयू कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किए जाएंगे, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर पहले ही उनके नाम तौसीक कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाद हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा एचएएम ने भी अपनी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया है। जब हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम शरीक अपने अपने कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब कर लेंगे तो एनडीए के 202 नौमंतखब अरकान कानून साज असेंबली की एक मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिनमें वो एनडीए कानून साज ग्रुप के लीडर का इंतखाब करेंगे। इसके बाद एनडीए के नौमंतखब लीडर गवर्नर को एमएलए की जानिब से हिमायत का खत सुपुर्द करेंगे और नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेंगे। इसी दौरान दस्तबरदार होने वाली सरकार की आखिरी काबीना मीटिंग वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में कल की जाएगी। तवक्को है कि काबीना अपनी ही सरकार को तहलील करने की सिफारिश करेगी, ताकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए राह हमवार हो सके। आकाशवाणी न्यूज पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों के माबेन उम्मीद और हौसला पैदा करने के लिए मुल्क की तरक्यात को उजागर करने में मीडिया की अहम रोल को सराहा। आज नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड्स तकरीब में शिरकत करते हुए नायब सदर ने कहा कि मीडिया बेजबानों को जबान और आवाज देने की खिदमत अंजाम देता है। इस मौके पर नायब सदर राधाकृष्णन ने सियाहत, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर ममलकत सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड पेश किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कतर के वजीर आजम और उमूर खारजा के वजीर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी ने दोहा में अपनी मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया के वाकयात पर तबादले ख्याल करने के साथ साथ सरहदी, इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कतर के वजीर आजम और कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अस्सानी से दोहा में अपनी मुलाकातों पर इजहार मुसर्रत किया। उन्होंने कहा कि तबादले ख्याल में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के राबतों समेत जामे शराकतदारी के कलीदी पहलुओं का इहाता किया गया। अमीर कतर के साथ मीटिंग में जनाब शंकर ने उन तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुंचाई और मजबूत तर भारत कतर ताल्लुकात के तई अहद का इदा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल हरियाणा के शहर फरीदाबाद में शिमाली इलाकाई कौंसिल की 32वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। اس میٹنگ میں شمالی زون میں شامل ممبر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندگان شرکت کریں گے اور علاقائی اور قومی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ فورم مرکز اور ریاستوں کے درمیان تعاون کے مذاکرات کے لیے ایک جامع پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ آج پریس کا قومی دن منایا گیا۔ 1966 میں آج ہی کے دن پریس کاؤنسل آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا تھا، جس نے میڈیا کے لیے ایک آزاد اخلاقی نگراں کے طور پر اسی دن سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے آج نئی دلی میں پریس کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ اتر پردیش کے سون بھدر ضلع میں کل شام ایک کان کے دھس جانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ 12 سے زیادہ لوگوں کے وہاں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں نیز مقامی انتظامیہ وہاں پھنسے ہوئے کارکنوں کو بچانے کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اعلیٰ عہدیدار بھی وہاں موجود ہیں۔ ایڈیشنل ڈی جی پی پیوش موردیا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اوبرا کے بلی مرکنڈی گاؤں میں کرشنا مائنز کے اندر ایک دیوار کے گرنے سے یہ کارکن وہاں پھنس کر رہ گئے تھے۔ مرنے والے شخص کی لاش نکال لی گئی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں آج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں دو خاتون باغیوں سمیت تین ماؤ نواز مارے گئے۔ ان پر 15 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ پولیس کے مطابق تمال پاڑ علاقے کے جنگلوں میں ماؤ نوازوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ کی ایک ٹیم کو تلاش کی کارروائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج صبح سے سیکیورٹی فورسز اور ماؤ نوازوں کے درمیان رک رک کر گولی باری ہو رہی تھی۔ ابھی تک جائے وقوع سے تین ماؤ نوازوں کی لاشیں برامد کی جا چکی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تصادم کی جگہ سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مادہ بھی ضبط کیا ہے۔ بستر رینج کے انسپکٹر جنرل پولیس سندر راج نے بتایا کہ علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی دستوں کی اضافی ٹیموں کو بھیجا گیا ہے۔ علاقے میں تلاش کی بڑی کارروائی جاری ہے۔ کیرلا میں سبری مالا ایپا بھگوان کے پہاڑی مٹ کو منڈالا مکرا ولکو سالانہ یاترا کے لیے آج شام کھول دیا گیا ہے۔ شام میں مندر میں پوجا کرنے والے عقیدت مندوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ بھارت دبئی ایئر شو میں اپنی دفاعی قوت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ دو روزہ متحدہ عرب امارات یو اے ای میں کل شروع ہوگا۔ بھارتی فضائیہ اس ایئر شو میں سوریہ کرن ایروبیٹک ٹیم اور ایل سی اے تیجس کے ساتھ حصہ لے گی۔ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ بھارتی وقت کی قیادت کریں گے۔ وہ بھارت، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا، امریکہ، برازیل، برطانیہ اور اٹلی کی تقریباً 50 صنعتی کمپنیوں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس کی صدارت کریں گے، جس کا مقصد بھارت میں دفاعی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں وکیلوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہڑتال آئین کی متنازعہ 27ویں ترمیم کے خلاف کی جا رہی ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی گئی ہے۔ مظاہرین نے ججوں سے بھی زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ظاہر کرنے کے لیے استعفیٰ دیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جمعرات کو آئین کی اس 27ویں ترمیم پر دستخط کر کے اسے قانونی شکل دی تھی، جس کے تحت دفاعی فوجوں کے سربراہ کی ایک نئی حیثیت اور ایک آئینی عدالت قائم کی گئی ہے۔ اس متنازع ترمیم کے خلاف ابھی تک 3 سینئر ججوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں جرائم سے متعلق بین الاقوامی ٹرائبونل کل سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے دو قریبی ساتھیوں کے کیس میں فیصلہ سنائے گا۔ یہ کیس انسانیت کے خلاف جرائم کا ہے۔ اس سلسلے میں اعلان ڈھاکہ میں سخت حفاظتی بندوبست کے دوران کیا گیا۔ ٹرائبونل کے اطراف بارڈر گارڈ بنگلہ دیش، تیزی سے کارروائی کرنے والی بٹالین اور فوج کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ بھارتی نشانے بازوں نے سماعت سے محروم افراد کی اولمپکس 2025 میں بہترین آغاز کیا ہے۔ دھنوش شری کانت نے ٹوکیو میں مردوں کے ایئر رائفل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خواتین کے ایئر رائفل مقابلے میں مہت سندھو نے چاندی کا تمغہ جیتا اور کومل واگمارے نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نابینا خواتین کے پہلے ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ کپ میں بھارت نے آج سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے گئے ایک زبردست مقابلے میں پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ بھارت نے صرف 10 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 136 رن کا نشانہ حاصل کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں جنوبی افریقہ نے کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں پہلے ٹیسٹ میں میچ میں بھارت کو 30 رن سے ہرا کر 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی۔ باکسنگ میں بھارت نے آج گریٹر نوئیڈا میں عالمی کپ فائنل میں جیت کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا، جس میں تمام چاروں باکسر اپنے کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں شاندار جیت حاصل کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔